पृष्ठ 12 साहित्य और समाज। समाज का साहित्य पर प्रभाव। कवि या लेखक अपने समय का प्रतिनिधि होता है। उसको जैसा मानसिक खाद्य मिल जाता है वैसी ही उसकी कृति होती है। जिस प्रकार बेतार के तार का ग्राहक यंत्र आकाश मंडल में विचरित हुई विद्युत तरंगों को पकड़कर उनको भाषित शब्द का आकार देता है, ठीक उसी प्रकार कवि या लेखक अपने समय के वायुमंडल में घूमते हुए विचारों को पकड़कर मुखरित कर प्रश्न 13 देता है। कवि वह बात कहता है जिसको सब लोग अनुभव करते हैं, किंतु जिसको सब लोग कह नहीं सकते। सहृदयता के कारण उसकी अनुभव शक्ति औरों से बड़ी चढ़ी होती है। जहाँ उसको किसी बात की छिन्न से छिन्न रेखा दिखाई पड़ी वह उसके आधार पर पूरा चित्र खींच लेता है। प्रायः उसका चित्र ठीक उतरता है। कवि या लेखक गण अपने समाज के मस्तिष्क और मुख दोनों होते हैं। कवि की पुकार समाज की पुकार होती है। वह समाज के भावों को अपनी वाणी का बल ही नहीं देता, वरन कभी कभी उन्हें नई दिशा भी देता है। कवि समाज के भावों को व्यक्त कर सजीव और शक्तिशाली बना देता है। कवि की बनाई हुई सामाजिक भावों की आदर्श मूर्ति समाज की उन्नायिका बन जाती है। इस प्रकार कवि और लेखकगण समाज के उन्नायक और इतिहास के विधायक अवश्य होते हैं, किंतु उनकी भाषा में हमको समाज के भावों की झलक मिलती रहती है। कवि द्वारा हम समाज के हृदय तक पहुंच जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, वरन हमको उन परिस्थितियों का पता लग जाता है जो समाज को प्रभावित कर वायुमंडल में एक नई लहर उत्पन्न कर देती हैं। समाज के प्रतिनिधि स्वरूप कवियों और लेखकों के विचार ही संग्रहित हो साहित्य बनाते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। यद्यपि मानव हृदय एक सा ही है, तथापि प्रत्येक जाति के साहित्य की अपनी विशेषता होती है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुकूल समय समय पर अंतर पड़ता रहता है। जो त्याग और आत्मा का विस्तार हम उपनिषदों में पाते हैं, वह हम अन्य जातियों के धार्मिक साहित्य में नहीं देखते। भारत के स्वच्छ उन्मुक्त उज्ज्वल ज्योत्समय तपोवनों ने भारतीय हृदय में जो अनंतता के भाव उत्पन्न किए थे उनकी झलक हमको उपनिषद साहित्य में ही मिलती है। परिस्थितियों के आवर्तन परिवर्तन, राज्यों के उलट पुलट और विचारों के संघर्ष के कारण वे भाव दब जाते हैं, किंतु समय पाकर फिर उदय हो जाते हैं। उनके विचारों में भाग्यवाद अवश्य है, किंतु कर्मवाद नहीं। हिंदुओं में कर्म ही भाग्य के विधायक माने जाते हैं। मुसलमानों में ईश्वर की मर्जी ही प्रधान मानी गई है। सम्मिलित परिवार का जैसा चित्र हिंदू साहित्य में मिलता है वैसा और कहीं नहीं। शेक्सपियर लाख कोशिश करने पर भी रामचरितमानस की कल्पना नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार तुलसीदास जी मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को विचार में भी नहीं ला सकते थे, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में ईश्वर के विरुद्ध शैतान की बगावत का वर्णन है। पहले तो हिंदू साहित्य में ईश्वर की कोई प्रतिद्वंदिनी शक्ति है ही नहीं। फिर तुलसीदास जैसे मर्यादावादी अधिकारों के मानने वाले उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हिंदुओं में देवता और दानवों का विरोध रहा है, किंतु न वह शैतान की तरह स्वर्ग में रहता था और न उसका प्रश्न 14 शैतान का सा व्यापक प्रभाव था। मिल्टन ने जिस समय यह ग्रंथ लिखा उस समय इंग्लैंड में अधिकारों के खिलाफ आवाज उठ रही थी। हमारे यहाँ राजाओं के विरोध में राजा वेणु की कथा अवश्य है, किंतु वह बड़ा अत्याचारी था। हिंदू लोग स्वभाव से अधिकारों के मानने वाले होते हैं। हिंदू जाति में त्याग और अहिंसा के भावों का प्राधान्य रहा है, इसलिए यहाँ के साहित्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, त्यागी बुद्धदेव, सत्यपरायण हरिश्चंद्र, परोपकारी शिवी तथा दधीचि के वर्णनों का प्राधान्य रहता है। उर्दू कवियों के प्रेम वर्णन में जितना सीख और कबाब का हत्याकांड है उतना हिंदी कवियों में नहीं। भारतवर्ष में घी दूध का बहुत आदर रहा है। यहाँ के देहात्मवादी चार्वाक भी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ही कहते हैं, सुराम पिबेत नहीं कहते। पूर्वी देशों में पश्चिम की अपेक्षा अलंकार प्रियता अधिक है। जिस तरह भारतीय नारियां आभूषणों को पसंद करती आई हैं, वैसे ही कविगण भी कविता को अलंकारों से सजाने का प्रयत्न करते रहे हैं। अतएव जितने भाषा के अलंकार पूर्वी साहित्य में मिलते हैं, उतने पश्चिमी साहित्य में नहीं। प्रत्येक जाति के भाव, चाहे वे भले हो चाहे बुरे, अपना व्यक्तित्व रखते हैं और वे उसके साहित्य में झलक उठते हैं। साहित्य का समाज पर प्रभाव। जिस प्रकार साहित्य में सामाजिक भावों और विचारों की प्रतिच्छाया रहती है, उसी प्रकार हमारा समाज भी साहित्य द्वारा प्रसारित भावों से प्रभावित होता है। कवि और लेखक किसी अंश में समाज के प्रतिनिधि होते हैं और किसी अंश में वे समाज को अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व के आधार पर नए भाव और विचार प्रदान करते हैं। समाज कवि और लेखकों को बनाता है और लेखक तथा कवि समाज को बनाते हैं। दोनों में आदान प्रदान तथा क्रिया प्रतिक्रिया भाव चलता रहता है। यही सामाजिक उन्नति का नियामक सूत्र बनता है। आजकल का संसार विचारों का ही संसार है। जो कोई परिवर्तन या विप्लव होता है, उसका मूल स्रोत किसी विचारधारा में ही रहता है। वट बीज के समान विचारों की बड़ी संभावनाएं हैं। वर्तमान समय के सब राजनीतिक आंदोलन विचारों के ही फल हैं। साहित्य द्वारा ही हमारा ज्ञान विस्तृत होकर वर्तमान से असंतुष्ट बनाता है। साहित्य हमारी हीन अवस्थाओं को दूसरों की उन्नत अवस्थाओं से तुलना कर हमारा नेत्रोन्मीलन कर हम में शक्ति का संचार करता है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों और उनकी कहानियों ने भारत के किसानों के प्रति हमारी सहानुभूति जागृत करने में बहुत कुछ योग दिया है। वर्तमान निष्क्रिय प्रतिरोध बौद्धकालीन विचारों एवं टॉलस्टॉय के विचारों का फल है। रूसी राज विप्लव वहाँ के साम्यवाद संबंधी विचारों का ही परिणाम है। फ्रांस की राज्य क्रांति बोल्टेर और रूसो के विचारों का ही प्रतिबिंब है। निश्चय आदि दार्शनिकों के विचार, जिन्होंने जर्मन जाति में शक्ति की उपासना तथा अपनी सभ्यता के विस्तार के भाव उत्पन्न किए थे, गत महासमारोह के लिए उत्तरदायी हैं। पृष्ठ 15। जिस प्रकार साहित्य मारकाट और क्रांति के लिए उत्तरदायी है, उसी प्रकार साहित्य सुख शांति और स्वातंत्र्य के भावों का भी कारण है। महात्मा तुलसीदास जी के रामचरितमानस ने कितने अंधकार में हृदय को अलोकित नहीं किया, कितने घरों में संतोष और शांति का संदेश नहीं पहुंचाया। जिन खोजा तिन पाइया वाले कबीर के उत्साह भरे शब्दों ने कितने हताश पुरुषों में प्राण का संचार नहीं किया। हिंदू जाति की आध्यात्मिक संस्कृति धर्म वीरता और अहिंसावाद में भारतीय साहित्य की ही झलक मिलती है। समर्थ गुरु रामदास और महाराष्ट्र संतों के उपदेश और भूषण आदि कवियों की उत्तेजनामयी रचनाएं महाराष्ट्र के उत्थान में बहुत कुछ सहायक हुई। वीर गाथाओं ने उस काल में वीर भावों का संचार किया। साहित्य हमारे अव्यक्त भावों को व्यक्त कर हमको प्रभावित करता है। हमारे ही विचार साहित्य के रूप में मूर्तिमान हो हमारा नेतृत्व करते हैं। साहित्य ही विचारों की गुप्त शक्ति को केंद्रस्थ कर उसे कार्यकारिणी बना देता है। साहित्य हमारे देश के भावों को जीवित रखकर हमारे व्यक्तित्व को स्थिर रखता है। वर्तमान भारतवर्ष में जो परिवर्तन हुआ है और जो धर्म में अश्रद्धा उत्पन्न हुई है, वह अधिकांश में विदेशी साहित्य का ही फल है। साहित्य द्वारा समाज में जो परिवर्तन होता है, वह तलवार द्वारा किए हुए परिवर्तन से कहीं स्थायी होता है। आज हमारे सौंदर्य संबंधी विचार, हमारी कला का आदर्श, हमारा शिष्टाचार तथा शिष्टाचार सब विदेशी साहित्य से प्रभावित हो रहे हैं। रोम ने यूनान पर राजनीतिक विजय प्राप्त की थी, किंतु यूनान ने अपने साहित्य द्वारा रोम पर मानसिक विजय प्राप्त कर सारे यूरोप पर अपने विचारों और संस्कृति की छाप डाल दी। प्राचीन यूनान का सामाजिक संस्थान वहाँ के तत्कालीन साहित्य के प्रभाव को ज्वलंत रूप से प्रमाणित करता है। यूरोप की जितनी कला है, वह प्रायः यूनानी आदर्शों पर चल रही है। इन सब बातों के अतिरिक्त हमारा साहित्य हमारे सामने हमारे जीवन को उपस्थित कर उसको सुधारता है। हम एक आदर्श पर चलना सीखते हैं। साहित्य हमारा मनोविनोद कर हमारे जीवन का भार भी हल्का करता है। जहाँ साहित्य का अभाव है वहाँ जीवन इतना रम्य नहीं रहता। साहित्य गुप्त रूप से सामाजिक संगठन और जातीय जीवन का भी वर्धक होता है। हम अपने विचारों को अपनी अमूल्य संपत्ति समझते हैं, उन पर हम गर्व करते हैं। अपने किसी सम्मिलित वस्तु पर गर्व करना जातीय जीवन और सामाजिक संगठन का प्राण है। अंग्रेजों को शेक्सपियर पर बड़ा गर्व है। एक अंग्रेज साहित्यिक का कथन है कि वे लोग शेक्सपियर पर अपना सारा साम्राज्य न्योछावर कर सकते हैं। हमारा साहित्य हमको एक संस्कृति और एक जातीयता के सूत्र में बांधता है। जैसा साहित्य होता है वैसा ही हमारी मनोवृत्तियाँ हो जाती है और हमारी मनोवृत्तियों के अनुकूल हमारा कार्य होने लगता है। इसलिए हमारा साहित्य हमारे समाज का पृष्ठ 16 प्रतिबिंब ही नहीं वह उसका नियामक और उन्नायक भी है।